मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां अक्सर मुसलमानों और गैर मुस्लिमों का मौजू बहस रहती हैं। इतनी शादियों की क्या ज़रूरत थी?
शादी दुनिया में जिन मकासद से की जाती है उनमें से सबसे बुनियादी मकसद ये है कि एक ख़ानदान का इदारा वजूद में आए और अल्लाह ताला की वो स्कीम रूबकार हो जिसके तहत उसने दुनिया को बनाया है। ख़ानदान के इदारे के बारे में मैं अपने लेक्चर्स में भी और अपनी किताबों में भी बड़ी वजाहत से कह चुका हूँ कि ये हवा और पानी की तरह इंसान की ज़रूरत है और ये इदारा एक ही मियाँ बीवी से सही तरीके पर कायम होता है। चुनाचे अल्लाह ताला ने भी जब इंसान को बनाया तो आदम व हव्वा के माबैन ये रिश्ता कायम किया, यानी ऐसा नहीं किया कि आदम है और आदम के साथ कोई 10 औरतें बना दी हैं, बल्कि एक आदम व हव्वा के माबैन ताल्लुक ही से इस इदारे की बुनियाद पड़ी। इस वक्त भी बशरी पहलू से अगर आप देखें, इंसानियत के लिहाज से देखें, इंसान की ज़रूरत के लिहाज से देखें, तो एक अच्छा घर, एक अच्छा ख़ानदान ये एक मियाँ बीवी के ताल्लुक से वजूद में आता है। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हैसियतें हैं, एक हैसियत एक इंसान की हैसियत है, एक बशर की हैसियत है, और एक दूसरी हैसियत ये है कि पूरी इंसानियत में से खुदा ने अपने आखिरी रसूल की हैसियत से आपका इंतखाब किया। बशरी हैसियत से रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कभी एक से ज़्यादा औरत नहीं रही, कभी भी नहीं। यानी रसूलुल्लाह सल्लम की पूरी ज़िंदगी में जब इंसान की हैसियत, जिसके लिए हम मैं आप शादी करते हैं, उन ज़रूरतों को सामने रखकर आपने एक ही शादी की और एक ही बीवी आपके निकाह में रही। इस लिहाज से इसकी मैं थोड़ी सी तफसील अर्ज कर देता हूँ। ये आम तौर पर मालूम है कि कमो बेश 25 साल की उम्र में आपने शादी का इरादा किया है और अरब की एक ऐसी खातून से शादी की जो बेवा भी थी और जिनके बच्चे भी थे और जिनकी उम्र भी अगर मुख्तलिफ रवायात सामने रखी जाए तो 38 साल, 40 साल और बाज़ लोग इससे भी ज़्यादा बयान करते हैं। उनका इंतखाब रसूलुल्लाह सल्लम ने किया, उस इंतखाब का बायस क्या चीज़ हुई वो भी तारीख ने महफूज रखी है कि अगरचे वो एक बेवा खातून थी, अगरचे एक बड़ी उम्र की खातून थी, लेकिन अपनी सीरत, अपने किरदार और अपनी पाकीज़गी अखलाक की बुनियाद पर उनको ताहिरा कहा जाता था। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर आबाद करने के लिए उनका इंतखाब किया और फिर जिस उम्र में शादी की थी, जाहिर है कि जवानी की उम्र यही उम्र होती है, इसी में इंसान के अंदर कुछ शादी से मुतल्लक तकाजे भी अपने उरूज पर होते हैं। आपने 25 साल तक कमोबेश उनकी ज़िंदगी में कभी ख्याल भी नहीं किया कि आप किसी दूसरी औरत से शादी करेंगे, वही तन्हा आपके निकाह में रही, यहाँ तक कि उनकी वफात हो गई। जब उनकी वफात हुई तो कुछ अरसे तक फिर भी आपकी तवज्जो इस जानिब नहीं हुई, लेकिन छोटी बच्चियाँ भी थीं और घरदार की जिम्मेदारियों को संभालने वाला भी कोई नहीं था और आप पूरी तरह उस पैगाम की तरफ भी अब मुतवज्जे हो चुके थे जो खुदा ने आपके सपुर्द किया था। तो एक मौके पर, जिस तरह के तारीखी रवायात बयान करती हैं, एक सहाबिया जो सिन रसीदा सहाबिया थी, हजरत खौला, उन्होंने कहीं आपसे देखकर ये कहा कि मैं ये महसूस करती हूँ जब से खदीजा दुनिया से रुखसत हुई है तो आप कुछ मोहताज से होकर रह गए हैं, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? तो आपने पूछा कि क्या कोई रिश्ता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ रिश्ता है, कंवारी भी है और बेवा भी है। तो आपने फरमाया बात करके देख लो। अब ये हुस्न इत्तेफाक कहिए कि उन्होंने जाके बात की तो दोनों जगह बात मंजूर कर ली, यानी कंवारी तो सैयदा आयशा थी, अगरचे उनका रिश्ता इससे पहले तय हो चुका हुआ था, लेकिन उनके वालिद के इस्लाम कबूल कर लेने के नतीजे में वो लोग रिश्ता तोड़ देना चाहते थे तो जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसे ही गुफ्तगू की कि अब वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। चुनांचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने और उनकी अहलिया ने भी ये कहा कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और सौदा बिनते जमा जो एक फिर 50 साल की बूढ़ी खातून थी, उन्होंने भी रिश्ता कबूल कर लिया। अरब की रवायात के लिहाज से अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार नहीं कर सकते थे। यानी जब आपने ये जुमला कहा कि दोनों से बात करके देख लो, तो उस वक्त तो ज़ाहिर है पेश नज़र ये था कि मालूम नहीं कि वो कबूल करते हैं या वो कबूल करते हैं। दोनों जगह कबूल कर लिया गया। उसके बाद भी देखिए कि हुजूर ने क्या किया। आपने सौदा बिनते जमा से शादी की, यानी निकाह दोनों से हो गया, लेकिन रुख्सती सिर्फ हजरत सौदा बिनते जमा की, जो खुद एक 50 साल की सन रसीदा खातून है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आप चाहते थे कि घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कोई तजर्बेकार खातून हो जो मामलात को देख सके और जिसकी उस तरह की ज़रूरियात भी ना हो कि जो आपकी दावत या आपके पैगाम या आपके काम में रुकावट बने। तो उनको आप अपने घर ले आए। फिर पूरी मक्की ज़िंदगी में तनहा वही आपके घर में रही। हिजरत में के ज़माने में भी वही आपके घर में थी। हिजरत करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए, तब भी वही आपके घर में थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने एक मौके के ऊपर आपको तवज्जो दिलाई कि चूंकि आप निकाह कर चुके हैं तो अपनी बीवी को आप घर में ले आए। तो आपने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि सौदा बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। अब अरब के माशरे के अंदर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो आपने ये ख्वाहिश जाहिर की कि आप उनको छोड़ दें। अब ये देखिए कि जिस वक्त सौदा को घर में लाए, तो बावजूद इसके कि सैयदा आयशा से निकाह हो चुका था, आपने ये पसंद नहीं किया कि एक कंवारी बच्ची घर में आएगी या लड़की घर में आएगी या खातून घर में आएगी तो ये बूढ़ी खातून या बुज़ुर्ग खातून, इसकी हक तलफी ना हो। इल्तफात शौहर का ज़ाहिर है कि हर औरत की एक ख्वाहिश होती है। तो आपने उसी बूढ़ी खातून के साथ बाकी वक्त बसर किया और जैसे मैंने अर्ज़ किया, हिजरत भी की, बाद में भी तशरीफ़ लाए। अब जब ये मौका आया तो फिर वही बात कि एक ही बीवी बशरी तकाज़ों के लिहाज से होनी चाहिए, तो आपने इरादा ज़ाहिर किया। तो हजरत सौदा ने यह दरख्वास्त की कि मेरी तो कोई उस तरह की अब ज़रूरियात रह नहीं गई और मैं आपसे कोई मुतालबा भी नहीं करती, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि क़यामत के दिन मैं आप ही की अजवाज में उठूँ, तो आज राह करम आप मुझे अलग ना करें और मेरे तमाम मामलात सैयदा ही के सपुर्द करें। तो सैयदा आयशा आपके घर में आ गईं और फिर वो अमली लिहाज से तनहा वही आपकी बीवी थी। ये रिसालत माँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशरी लिहाज से एक इंसान की हैसियत से शादियाँ की हैं। तो इसमें तो किसी एक मरहले के ऊपर भी आप नहीं कह सकते, यानी ये वो हस्ती है कि जिस हस्ती का मामला ये है कि जवानी के ज़माने में जबकि बहुत कुछ मंगे हो सकती हैं तब भी एक बेवा खातून का इंतखाब किया, फिर दूसरी मर्तबा जब उनकी वफात के बाद एक कंवारी औरत से और एक बेवा खातून से शादी की तो घर में लाने के लिए उसी बेवा खातून का इंतखाब किया और एक लंबे अरसे तक वही रहीं। सैयदा के वालिद के इसरार पर उनको घर में लाने के लिए आमादा हुए तो फौरन ज़हनी तौर पर तैयार हो गए कि एक ही बीवी रहनी चाहिए। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरी हैसियत में यही शादियाँ हुई। इसके अलावा आपने न कभी किसी खातून की तरफ इल्तफात किया, न कभी किसी से शादी का कोई इरादा किया। और ये बशरी लिहाज से जितना कुछ तकाजा हो सकता है उसको पूरा करने का जो एक अफीफ तरीन, एक पाकीज़ा तरीन इंसान का तरीका तस्वुर किया जा सकता है, वही आपने इख्तियार किया। आपकी एक दूसरी हैसियत ये थी कि आप अल्लाह के रसूल थे। रसूल की हैसियत से एक मिशन आपके सपुर्द किया गया। आपको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस सरजमीन अरब में खुदा का पैगाम पहुंचाएंगे, खुदा की हुज्जत पूरी करेंगे। और आप महज कोई मुबल्लिग, महज कोई वायज नहीं हैं, आप खुदा के रसूल हैं। आपकी हुज्जत जब पूरी हो जाएगी तो इसके बाद इस कौम पर अजाब आ जाएगा। चुनाचे ये एक अजीम मिशन है जिसको पूरा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद्दोजहद की। और इसमें दुनिया की तारीख का ये एक बिल्कुल गैर मामूली वाकया हुआ कि इससे पहले हजरत लूत की दावत के नतीजे में, हजरत साले की दावत के नतीजे में, हजरत नूह की दावत के नतीजे में आसमान के फरिश्तों के ज़रिए से खुदा ने कौमों को सजा दी, लेकिन आपके मामले में ये जिम्मेदारी आप पर और आपके सहाबा पर डाल दी गई कि आपको ये इकदाम करना है। یہ جو مشن ہے یا رسول کی حیثیت سے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی, اس کے لحاظ سے بعض اقدامات کا خدا کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا. اس میں پہلا مرحلہ اس وقت آیا جبکہ آپ کو اپنے اسی مشن کے پیش نظر دو جنگیں کرنا پڑی, ایک بدر کی جنگ اور ایک احد کی جنگ. دونوں جنگوں میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے. احد میں خاص طور پر 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے, ان میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے اور ان کی بیویاں بھی تھیں, ان کے بچے بھی تھے. تو اس موقع پر قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو, تمام مسلمانوں کو ترغیب دی کہ اس چھوٹی سی بستی میں یہ اتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں, ان کے بچے یتیم ہیں, ان کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ لوگ ان کی اس طرح کفالت نہیں کر سکتے تو آگے بڑھ کے ان کے ساتھ شادی کریں. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم لوگ ویسے اپنی خواہش سے تو شادیاں کر ہی لیتے ہو, اس وقت ایک قومی اور اجتماعی مسئلہ ہے تو اس میں اظہار کرو اور آگے بڑھو, اور ان یتیموں کو سہارا دینے کے لیے دو دو تین تین چار چار عورتوں سے شادیاں کر لو. یہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو کہا. تو ظاہر ہے کہ جب خدا کے رسول کے ذریعے سے سب مسلمانوں کو یہ کہا جائے گا تو سب سے بڑھ کر اس اظہار کی اپیل پر کون لبیک کہے گا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے بڑھ کر کچھ بیوہ خواتین کے ساتھ شادیاں کی. یہ تعداد میں چار ہیں جن میں سے ایک وفات پا گئیں. ان بیوہ خواتین کے بچوں کو آپ نے سہارا دیا, دوسرے صحابہ کرام نے بھی یہ ذمہ داری پوری کی اور آپ نے بھی پوری کی. اس کا کسی بشری خواہش سے کوئی تعلق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی, ایک بڑا مارکہ ہوا. آج کے زمانے کے حالات نہیں تھے, نہ اس طرح کی حکومتیں تھیں. ایک چھوٹی سی بستی میں دو جنگوں کے نتیجے میں بہت سی عورتیں بالکل بے سہارا ہو کر رہ گئیں. عرب کے معاشرے میں کوئی اس طرح کا خاندانی نظام نہیں تھا جس طرح ہمارے ہاں ہے. اس میں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہی ایک طریقہ لوگوں کے سامنے رکھیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا اور یہ کہا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, یہ یتیم بچے ہیں, ان کی ماؤں کو اپنے ساتھ شریک کر کے ان کی بہبود کے لیے شادی کرو. اس کا کوئی تعلق اس شادی سے نہیں تھا جو ہم آپ کرتے ہیں یا جو ہمارے ہاں لوگ بالعموم دوسری تیسری کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں, ایک معاشرتی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. بالکل ایسے ہی جیسے سیلاب آ جائے, جیسے کسی موقع پر زلزلہ آ جائے یا بڑی کوئی جنگ ہو جائے تو اپیل کی جاتی ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں, اس ترغیب کے نتیجے میں یہ شادیاں کی. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد میں بہت سی عورتوں کو بہت نازک حالات سے گزرنا پڑا, جس کی ایک مثال سیدہ ام حبیبہ ہیں. یعنی ان کے والد کون ہیں؟ وہ عرب کے ایک بڑے سردار ابو سفیان ہیں جو بعد میں اسلام لے آئے. اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے. وہ مکے میں مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کے لیے مجبور ہوئیں. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی, انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اپنے خاوند کے ساتھ وہ حبشہ منتقل ہوئیں, وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے لیکن وہاں جا کے مسیحی ہو گئے. ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس کے ساتھ وہ یوں سمجھیے کہ بالکل غریب الدیار دور دراز ایک علاقے میں بالکل تنہا رہ گئیں, اور وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. یہ میں نے ایک مثال دی. اس طرح کی بعض خواتین جن کو شدید صدموں سے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں گزرنا پڑا یا آپ کے بعض اقدامات کے نتیجے میں, بعض جنگوں کے نتیجے میں گزرنا پڑا, تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ کہا کہ آپ کے خاندان کی وہ عورتیں, یعنی آپ کی چچا زاد, آپ کی مامو زاد, خالہ زاد, جو بہنیں آپ کی یا آپ کی قریبی اس طرح کی عزیزہ ہیں, ان میں سے اگر کسی کو اعزاز بخشنے کے لیے, اس کی تالیف قلب کے لیے, جن مشقتوں سے وہ خواتین گزری ہیں ان میں ان کو سہارا دینے کے لیے, ان کی تالیف قلب کے لیے, ان کی دلداری کے لیے آپ شادی کرنا چاہیں تو آپ کو کرنی چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ یہ اشارہ موجود تھا کہ آپ ہی کو آگے بڑھ کر یہ کرنا چاہیے. چنانچہ سیدہ ام حبیبہ کی میں نے مثال دی, ایسے ہی دو تین اور خواتین ہیں. تو یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی تاریخ ہے. یعنی بشری حیثیت سے آپ نے ایک سے زیادہ شادی کا کبھی خیال بھی نہیں کیا. اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے البتہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے ایما سے آپ کو یہ شادیاں کرنی پڑی. یہ تو ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اقدام ہے. اس کو ان شادیوں کے لحاظ سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے جو میں اور آپ کرتے ہیں.